नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत मुस्तफा कमाल एवं टर्की का पुनर्निर्माण नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। मुस्तफा कमाल का जीवन काल 1881 से 1938 के मध्य माना जाता है। प्रारंभिक जीवन। मुस्तफा कमाल ने अपने कुशल नेतृत्व में न सिर्फ तुर्की को ही जंजीरों से मुक्त किया, बल्कि उसे एक नूतन कलेवर भी दिया। अतः वह आधुनिक तुर्की का पिता अथवा अतातुर्क के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में उसका जीवन काल उसकी अद्भुत सफलताओं की एक कहानी है। उसका जन्म 1881 ईस्वी में सैलोंका में हुआ था। उसके पिता का नाम अली रजा एफंदी एवं माता का नाम जुबैद था। 1888 ईस्वी में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई तथा उसका सारा भार माँ पर आ गया। 1893 ईस्वी में सैलोनिका विद्यालय में दाखिल हुआ तथा 1899 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के सैनिक महाविद्यालय में भर्ती हुआ और वहाँ से 1905 ईस्वी में सैनिक अधिकारी बनकर निकला। वह एकता प्रगति संघ के संपर्क में इसी काल में आया, परंतु राजनीतिक जंजालों में उसने दिलचस्पी नहीं ली। 1912-13 ईस्वी के बाल्कन युद्ध में भी उसने सफलता तथा नाम हासिल किया। प्रथम महायुद्ध में गैलीपोली अभियान में मित्र राष्ट्रों की विफलता में उसका प्रमुख हाथ था तथा वह राष्ट्रनायक के रूप में माना जाने लगा। उसे ब्रिगेडियर का पद एवं पाशा की उपाधि दी गई। तत्पश्चात उसने रूसी फौजों के विरुद्ध काकेसस में सफलता हासिल की और 1918 ईस्वी के अक्टूबर में एलएनवी की फौजों की प्रगति को सीरिया में रोक दी। इस प्रकार युद्ध की समाप्ति के समय वह देश का एकमात्र सितारा बन गया। मई 1919 ईस्वी में सुल्तान ने उसे सेना का प्रधान निरीक्षक बनाकर अनातोलिया में भेजा तथा यहीं से उसने राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। 8 जुलाई 1919 ईस्वी को सुल्तान ने उसे सैनिक पद से बर्खास्त कर दिया, परंतु इसने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में बनाए रखा। राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के एर्ज़ेरुम सम्मेलन जुलाई 23 अगस्त 1919 में उसने अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया तथा सिवास सम्मेलन ने सितंबर में इसे स्वीकृति दी। तत्पश्चात 23 अप्रैल 1920 ईस्वी को उसने अनातोलिया की राजधानी अंकारा में महान राष्ट्रीय सभा ग्रैंड नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई। इस सभा से देश के शासन का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया तथा मुस्तफा कमाल को उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया। 20 जनवरी 1921 ईस्वी को महान राष्ट्रीय सभा से देश के लिए सामयिक संविधान की घोषणा की। इसी समय 5 अगस्त को मुस्तफा कमाल के हाथ में संपूर्ण कार्यकारिणी एवं सैनिक शक्ति प्रदान कर दी गई। सितंबर 1921 ईस्वी के सकरिया नदी के युद्ध से विजय प्राप्त करने के पश्चात उसे मार्शल का पद एवं गाजी की उपाधि दी गई। इसके प्रयासों के फलस्वरूप लेजान की संधि 24 जुलाई 1923 ईस्वी द्वारा टर्की ने स्वाधीनता प्राप्त की एवं अक्टूबर 1923 ईस्वी तक विदेशी फौजों को खदेड़ दिया। 29 अक्टूबर 1921 ईस्वी को टर्की एक गणराज्य घोषित कर दिया गया तथा मुस्तफा कमाल इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे इस पद पर जीवन पर्यंत बने रहे तथा उन्होंने देश की काया पलट कर दी। टर्की में आंतरिक सुधार। प्रथम महायुद्ध के पश्चात टर्की का पुराना ढांचा नष्ट हो गया था। अब उसे एक नया स्वरूप विकसित करना बाकी था। टर्की से अरब प्रदेश, यूरोपीय प्रदेश, गैर तुर्क आबादी का प्रायः लोप हो चुका था। टर्की का केंद्र अब अनातोलिया हो गया था। उसके सामने पुनर्निर्माण की भयंकर समस्या थी। टर्की की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। देश पर एक भारी वैदेशिक ऋण था। आबादी का एक विशाल भाग युद्ध में नष्ट हो गया था और लाखों ग्रीक टर्की से भाग गए थे। युद्ध में धनजन की अपार हानि हुई थी तथा कृषि एवं उद्योग प्रायः नष्ट हो गए थे। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कुर्द जाति स्वराज के लिए प्रयत्नशील थी। ऐसी अवस्था में मुस्तफा कमाल के सुयोग्य नेतृत्व ने टर्की के सम्मुख एक नया कार्यक्रम पेश किया। उसने टर्की को पाश्चात्य समस्या के रंग में रंगने तथा एक औद्योगिक देश में परिणत करने की योजना बनाई। वह टर्की के भूतकालीन प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ कर उसे नए धरातल पर स्थापित करना चाहता था, जिसे टर्की प्रगतिशील गणराज्य के रूप में सभ्य एवं उन्नत देशों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए उसने 6 सिद्धांतों का नारा दिया है। ये सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहला, गणतंत्रवाद रिपब्लिकिज्म। दूसरा, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म। तीसरा, सामंतवाद पॉपुलिज्म। चौथा, नियंत्रित अर्थवाद इटेटिज्म। पांचवा, धर्मनिरपेक्षवाद सेक्युलरिज्म। एवं छठा, क्रांतिवाद रिवोल्यूशनिज्म। इन सिद्धांतों के अनुसार वह टर्की को प्राचीन परंपरा से विमुख कर राष्ट्रीयता के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष प्रगतिवाद गणतंत्र बनाना चाहता था, जिसकी कानून व्यवस्था में समानता का आदर हो तथा अर्थव्यवस्था विधिपूर्वक नियंत्रित हो। इन सिद्धांतों को 1931 ईस्वी के उसके राजनीतिक दल ने मान्यता दे दी तथा 1937 ईस्वी में ये संविधान के अंग बन गए। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुस्तफा कमाल ने देश में आमूल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन लाए। उसने टर्की को पुरातन पंथी जंजालों से मुक्त करने के लिए दमन का भी सहारा लिया। उसकी जनप्रियता एवं प्रबल सैनिक क्रांति के कारण कोई भी विरोधी टिक नहीं सका तथा अंत में टर्की का कायापलट होकर रहा। राजनीतिक पुनर्निर्माण। टर्की के राजनीतिक पुनर्निर्माण की भूमिका स्वतंत्र संग्राम के समय में ही निर्मित हो चुकी थी। महान राष्ट्रीय सभा चुने 20 सितंबर 1921 ईस्वी को ही सामयिक संविधान लॉ ऑफ फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अपना कर सार्वभौम सत्ता राष्ट्र के हाथ में सौंप दी थी। इस प्रकार सुल्तान के शासन का मूल ही खोखला कर दिया गया था। 1 नवंबर 1922 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा सुल्तान के पद का अंत कर दिया गया तथा यह घोषणा कर दी गई कि 16 मार्च 1920 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर विदेशी कब्जा होने के दिन ही राजवंश का अंत हो गया था। अब सुल्तान भाग निकला और उसके चचेरे भाई अब्दुल मजीद को सिर्फ इस्लाम धर्म का खलीफा का पद दिया गया। इसी बीच जुलाई 1923 ईस्वी में लेजॉन की संधि हुई तथा अक्टूबर में विदेशी फौजों ने टर्की से विदा ली। अतः 19 अक्टूबर 1923 ईस्वी को टर्की एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष मुस्तफा कमाल निर्वाचित हुआ। इस गणराज्य का नया संविधान 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को लागू किया गया। इसके अनुसार व्यवस्थापिका एवं कार्यकारिणी का अधिकार राष्ट्रीय सभा के हाथ में रखा गया तथा उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। राष्ट्रीय सभा की अवधि 4 साल की रखी गई तथा सदस्यों के लिए शिक्षित होना आवश्यक रखा गया। इसके अतिरिक्त संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया एवं व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों और विचारों की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। इस तरह संविधान को जनतांत्रिक रूप दिया गया। संविधान को धर्मनिरपेक्ष करार दिया गया तथा 1928 ईस्वी में एक संशोधन द्वारा इस्लाम महज मजहब को राजधर्म के स्थान से हटा दिया गया। इसके बाद प्रशासनिक सुधारों को भी लागू किया। 1926 ईस्वी में देश को 62 प्रांतों में विभक्त कर दिया गया और प्रांतों को 430 जिलों एवं छोटे मंडलों में विभाजित कर दिया गया। इसके साथ ही देश की पुरानी न्याय व्यवस्था का भी अंत कर दिया गया। धार्मिक कचहरियों की 1924 ईस्वी के अप्रैल में ही भंग कर दिया गया था। अब देश में स्विट्जरलैंड के नमूने का दीवानी कानून, इटालियन फौजदारी कानून एवं जर्मन कोड पर आधारित व्यापारिक कानून लागू किया गया। इस प्रकार संवैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में आबूल परिवर्तन लाए गए। मुस्तफा कमाल ने पाश्चात्य जनतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर देश में राजनीतिक दलों को भी प्रोत्साहन दिया। वास्तव में देश में सिर्फ एक ही दल का शासन था जिसका नेता मुस्तफा कमाल था। मुस्तफा कमाल के सहयोगियों ने अप्रैल 1923 ईस्वी में जनता दल का संगठन किया था, जिसका नाम उन्होंने 10 नवंबर 1924 को गणतंत्रवादी जनता दल रखा। इसी समय 17 नवंबर 1924 ईस्वी को मुस्तफा कमाल के विरोधियों ने प्रगतिशील गणतंत्रवादी की स्थापना की, परंतु इस दल ने क्रियात्मक आलोचना की जगह पर ध्वंसात्मक नीति अपनाई तथा 1925 ईस्वी के कुर्द विद्रोह में इसके नेताओं का हाथ होने से 5 जून 1925 को व्यवस्था स्थापना विधि के अंतर्गत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तत्पश्चात मुस्तफा कमाल ने अपने परम मित्र फैथी वे को विरोधी दल के संगठन का भार दिया गया। उसने अगस्त 1930 ईस्वी में एक नया दल उदार गणतंत्रवादी दल की स्थापना की, परंतु टर्की में जनतांत्रिक परंपरा का अभाव था, अतः विरोधी दल ने कमाल के सुधारों का विरोध एवं तोड़फोड़ की नीति अपनाई। अतः उसने नवंबर 1930 ईस्वी में इस दल को भी भंग कर दिया। फिर भी मुस्तफा कमाल ने 16 स्थानों को प्रतिनिधि सभा में स्वतंत्र उम्मीदवारों को अपने दल की ओर से देना आरंभ किया। इस प्रकार किसी भी विरोधी दल की विकास उचित रीति से नहीं हो सका। मुस्तफा कमाल के सुधारों के जो अन्य हिंसक विरोध हुए उन्हें आसानी से कुचल दिया गया। आर्थिक पुनर्निर्माण। युद्धकालीन विध्वंस एवं युद्धोपरांत अनिश्चितता के कारण टर्की की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। कृषि को अपार क्षति पहुंची थी और उद्योग धंधे एवं व्यापार प्रायः नष्ट ही हो गए थे। विदेशी पूंजीपति टर्की में पूंजी लगाने में अनिच्छा प्रकट कर रहे थे। ऐसी अवस्था में मुस्तफा कमाल ने राज्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित उद्योग तथा व्यवसाय की नीति अपनाई। उसने आर्थिक योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया। इस नीति को नियंत्रित अर्थवाद इटैटिज्म के नाम से पुकारा जाता है। टर्की की क्षत विक्षत अर्थव्यवस्था एवं राजस्व प्रबंध में सुधार के हेतु फ्रेंच विशेषज्ञों को नियुक्त किया। इसके परिणाम स्वरूप राजस्व संबंधी अनेक सुधार लाए गए और एक संतुलित बजट तैयार किया गया। उसने देश के पुराने ऋणों को 1933 में वार्तालाप द्वारा घटाकर 8 करोड़ पाउंड नियत कर दिया। इसके साथ ही शराब, तंबाकू, नमक, अस्त्र शस्त्र आदि में उसने राज्य का एकाधिकार कायम कर दिया तथा वैदेशिक कंपनियों से रेलवे लाइन को खरीद लिया। इस समय नए नए कल कारखाने खोले गए तथा रेलवे लाइन बिछाई गई। नए नए सड़कों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई। इस प्रकार यातायात पर पूरा पूरा ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त उसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई और चालू किया। 1934 ईस्वी में कृषि के लिए चतुर्वर्षीय योजना, उद्योग के लिए पंचवर्षीय योजना, खनिज के लिए त्रिवर्षीय योजना तथा सड़क निर्माण के लिए 10 वर्षीय योजना का आरंभ हुआ, परंतु मुस्तफा कमाल ने योजनाओं को साम्यवादी योजनाओं से भिन्न रखा तथा उसने प्रायः सभी देशों से अपने यहाँ विशेषज्ञों को बुलाया। उसने राज्य संचालित कई बैंकों का भी संगठन किया। सुमेर बैंक, एटी बैंक, ईज बैंक, सेंट्रल बैंक आदि बैंकों को विभिन्न कार्य सौंपे गए। सेंट्रल बैंक को मुद्रा संचालन, सुमेर बैंक को उद्योग, इस बैंक को व्यवसाय तथा एटी बैंक को खनिज की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके साथ ही वैदेशिक व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई। 1936 ईस्वी में श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम कानून पास किए गए तथा अंकड़ा में केंद्रीय श्रम कार्यालय सेंट्रल लेबर ऑफिस की स्थापना की गई। इस प्रकार मुस्तफा कमाल ने अपने प्रयासों द्वारा देश को एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर आधारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सामाजिक पुनर्निर्माण। मुस्तफा कमाल ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में लाया। उसके तीन प्रमुख सिद्धांत समानतावाद, धर्मनिरपेक्षता एवं क्रांतिवाद इसी क्षेत्र से संबंधित थे। युद्धोत्तर टर्की में सामाजिक पुनर्निर्माण भी एक जटिल समस्या थी। टर्की से अरब एवं ग्रीक भारी संख्या में बहिष्कृत हो गए थे। इससे अरब संस्कृति एवं ग्रीक संस्कृति की आधारशिला ही नष्ट हो गई थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में ग्रीक ही अग्रणी थे तथा तुर्कों में शिक्षा का भी अभाव था। वास्तव में तुर्क अधिकांशतः पिछड़े हुए थे, परंतु अब उनके सांस्कृतिक विकास का मार्ग खुल गया तथा मुस्तफा कमाल ने प्राचीन परंपरा की अवहेलना करके टर्की में पाश्चात्य संस्कृति एवं सामाजिक जीवन स्थापित करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने आर्थिक एवं राजनीतिक समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा परंपरागत रूढ़ियों के विरोध की नीति अपनाई। इस दिशा में सुल्तान के राजवंश के अंत तथा गणतंत्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। 3 मार्च 1924 ईस्वी को मुस्तफा कमाल ने खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया तथा अब्दुल मजीद और सुल्तान सभी वंशजों को टर्की से निर्वासित कर दिया गया। इस तरह अतीत से जोड़ने वाली दो कड़ियों को छिन्न भिन्न कर दिया गया। तत्पश्चात अप्रैल 1924 उसने सभी धार्मिक कचहरियों, शिक्षालयों एवं मठों को बंद कर दिया। पवित्र संस्थाओं के मंत्रणालय मिनिस्ट्री ऑफ पायस फाउंडेशंस को भी समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर धार्मिक कार्य बोर्ड, बोर्ड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एवं पवित्र स्थान बोर्ड, बोर्ड ऑफ पायस फाउंडेशंस नामक दो सरकारी विभागों की स्थापना कर दी गई। धर्म के रूढ़िगत बंधन से मुक्ति के लिए 1 जनवरी 1926 ईस्वी को हिजरी संवत के स्थान पर ईसा संवत लागू किया गया तथा 1928 ईस्वी में इस्लाम धर्म का संवैधानिक स्थान खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही 25 अक्टूबर 1925 ईस्वी के एक कानून द्वारा तुर्की टोपी बुर्कों का प्रचलन भी समाप्त कर दिया और पाश्चात्य पहनावे पर जोर दिया। 1926 ईस्वी में बहुविवाह की प्रथा का अंत कर दिया गया तथा स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। 1934 ईस्वी में उन्हें मताधिकार मिला तथा वे अब प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में भाग लेने लगी। इसी वर्ष में एक कानून द्वारा दूसरे देशों के तुर्कों को टर्की में बसने के लिए आमंत्रित किया गया। बाल्कन प्रदेशों एवं रूस से काफी संख्या में तुर्क आए तथा इससे टर्की की आबादी में वृद्धि हुई। एक दूसरे कानून द्वारा सभी तुर्कों को अपने नाम के आगे पदवी धारण करना आवश्यक कर दिया गया, जिसमें कि वे नाम से जाने जा सकें। इस तरह मुस्तफा कमाल ने अतातुर्क की उपाधि ली तथा उसके सहयोगी इस्मत ने इनोनू की पदवी ली। इसके साथ ही ऑटोमन पदवियों का अंत कर दिया गया तथा उन्हें धारण करना जुर्म करार कर दिया गया। इन सब सुधारों द्वारा टर्की में नए समाज का उदय हुआ तथा धर्म के परंपरागत स्थान को प्रायः नष्ट कर दिया गया। 1935 ईस्वी में शुक्रवार के स्थान पर देश भर में साप्ताहिक छुट्टी का दिन रविवार कर दिया गया तथा 1937 ईस्वी में लोगों को धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। इस तरह धर्म के संकुचित रूढ़िगत बंधनों से टर्की को मुक्त कर दिया गया, जिसमें कि टर्की आधुनिक सभ्यता के पथ पर अबाध गति से प्रगति कर सके। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। सांस्कृतिक क्षेत्र में मुस्तफा कमाल ने टर्की में अशिक्षा का अंत तथा शिक्षा को पूर्ण विकास के हेतु अनेकानेक कदम उठाए। इस हेतु उसने सर्वप्रथम अरबी लिपि को 1928 ईस्वी में समाप्त कर दिया। वास्तव में अरबी लिपि क्लिष्ट थी। 1926 ईस्वी में सोवियत क्षेत्र के बाकू में हुए तुर्क भाषा भाषी सम्मेलन ने इसके स्थान पर रोमन लिपि स्वीकृत करने की सलाह दी। अतः मुस्तफा कमाल ने अनेक विरोधों के बावजूद रोमन लिपि का उद्घाटन किया तथा स्वयं इसके प्रचार अभियान का नेतृत्व किया। 1932 ईस्वी में उसने तुर्क भाषा समाज की स्थापना कर नई भाषा को समृद्ध बनाने के लिए कदम उठाए। इसके साथ ही 1930 ईस्वी में उसने टर्की के शहरों के पाश्चात्य नामों के स्थान पर तुर्क नामों की सरकारी मान्यता दी। इस तरह कुस्तुनतुनिया का नया नाम इस्तांबुल, अंगोड़ा का अंकड़ा, स्मरना का इजमिर पड़ा। प्रायः सभी पुराने नामों का स्थान नए नामों ने ले लिया। टर्की का इतिहास आरंभ भी उसने ओटोमन साम्राज्य से उदय से नामांकन, उसका अध्ययन द्वितीय सदी के हूनों के इतिहास से आरंभ कराया। नई लिपि के कारण शिक्षा का प्रचार आसान हो गया। संविधान में ही प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करार दिया गया था। अतः शिक्षा की काफी तेजी से प्रचार हुआ तथा माध्यमिक शिक्षणालयों एवं विश्वविद्यालयों का भी तेजी से उदय हुआ। व्यापार, कृषि, विज्ञान आदि क्षेत्रों के विद्यालय काफी संख्या में खोले गए तथा उच्च शिक्षा के हेतु वैदेशिक विशेषज्ञों की भी सहायता ली गई। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज तथा अंकड़ा में राजनीति एवं समाज विज्ञान के शिक्षणालय खोले गए। शिक्षा के अतिरिक्त व्यायाम तथा ललित कलाओं पर भी इन शिक्षणालयों में जोर दिया जाने लगा। इसके साथ ही इस काल में समाचार पत्रों का भी काफी विकास हुआ। सरकार ने एक समाचार एजेंसी, अनातोलिया समाचार एजेंसी की स्थापना की तथा कई पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। इनके अतिरिक्त देश में अनेक गैर सरकारी समाचार पत्र छपने लगे। अक्सन, उलूस, जान आदि पत्र इस दिशा में प्रसिद्ध थे। इससे जनता में जागृति का विकास होने लगा तथा टर्की में एक नई संस्कृति का उदय हुआ, जिसका वास्तविक स्वरूप पाश्चात्य संस्कृति का था। कमाल के सुधारों का विरोध। मुस्तफा कमाल ने अपने कार्यकाल में जो सुधार लागू किए, उन्हें राष्ट्रीय सभा से लागू कराया। राष्ट्रीय सभा में उसके अनुयायियों का बहुमत था तथा विदेशियों की संख्या नगण्य थी। इसके साथ ही मुस्तफा कमाल सेना का प्रधान था, अतः वह तानाशाह था। यद्यपि इस तानाशाही का उपयोग उसने देश में जनतंत्र के विकास के लिए ही किया, परंतु अपने विरोधियों को कुचलने में उसने कभी भी हिचकिचाहट नहीं दिखलाई। उसके विरोधियों में प्रायः धार्मिक नेता, मुल्ले एवं पुरातनपंथी रूढ़िवादी लोग थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विरोधी थे जिन्हें उससे व्यक्तिगत ईर्ष्या थी। सर्वप्रथम उसका विरोध मित्र राष्ट्रों की कैद से लौटे हुए ऑटोमन संसद के सदस्यों ने 1921 में आरंभ किया, परंतु 1923 ईस्वी के निर्वाचन में उन्हें पूर्ण असफलता मिली। इनमें सबसे जबरदस्त विरोध धार्मिक मुल्लाओं ने किया। वे उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के प्रबल विरोधी थे तथा इन्हीं के प्रयासों से 1925 ईस्वी में कुर्द जाति ने इस्लाम के नाम पर विद्रोह कर दिया। इसका समर्थन नवोदित प्रगतिशील गणतंत्रवादी दल ने भी किया, परंतु अप्रैल तक इसे पूर्णतया कुचल दिया गया तथा एक व्यवस्था स्थापना विधि पास करके 5 जून को इस विरोधी राजनीतिक दल का अंत कर दिया गया तथा 40 नेताओं को फांसी दे दी गई। इसी समय मुस्तफा कमाल की हत्या के षड्यंत्र का पता चला। अतः इस षड्यंत्र के सभी नेताओं को मौत की सजा दी गई। इस प्रकार 1926 ईस्वी के बाद मुस्तफा कमाल के विरोधियों की संख्या नहीं के बराबर हो गई। अतः 1928 ईस्वी में व्यवस्था स्थापना विधि की अवधि बढ़ाया नहीं गया। 1930 ईस्वी तथा 1936 ईस्वी कुर्दों ने पुनः छोटे मोटे विद्रोह किए, परंतु उन्हें आसानी से दबा दिया गया। इस प्रकार मुस्तफा कमाल ने देश में एक शांतिपूर्ण क्रांति ला दी। इसमें कम से कम खून खराबी हुई तथा देश का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। कमाल के सुधारों का मूल्यांकन। कमाल के 6 सिद्धांतों के आधार पर टर्की में जो सुधार हुए, उससे एक नवीन टर्की का जन्म हुआ। टर्की वास्तव में अपना विशाल साम्राज्य एवं आधी से अधिक आबादी खो चुका था। उसकी अर्थव्यवस्था क्षत विक्षत थी तथा जनता अशिक्षित एवं मूर्ख थी, परंतु सुधारों के पश्चात टर्की एक नवीन प्रगतिशील राष्ट्र बन गया। इसे एक लिखित गणतांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ, जिससे पाश्चात्य जनतंत्र के आधार पर राजनीतिक दलों का आविर्भाव संभव हुआ। आर्थिक क्षेत्र में नवीन उद्योग एवं व्यवसाय विकसित हुआ और अर्थव्यवस्था का पुनर्संगठन हुआ। नए नए उद्योग, कारखाने, आर्थिक संस्था, बैंक, श्रम कानून आदि द्वारा देश के आर्थिक जीवन का नक्शा ही बदल गया। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में नवीन परिधान, पदवियों तथा उपाधियों, स्त्रियों के अधिकार तथा धार्मिक सहिष्णुता ने पुरानी व्यवस्था का अंत कर नए समाज की रचना की। शिक्षा के प्रसार द्वारा टर्की विश्व के संपर्क में आया तथा सभ्यता के क्षेत्र में आगे बढ़ा। इतिहास में संशोधनों द्वारा उसे एक नवीन गौरवमय अतीत की प्राप्ति हुई। इन सबों से तुर्क जाति के लिए नवीन राष्ट्रीयता एवं नए भविष्य का सृजन हुआ। इस तरह सारे टर्की का कायापलट हो गया। तथापि टर्की के सुधारों में कतिपय त्रुटियां भी रह गई थीं, जो आज भी वहां वर्तमान है। सुधार काफी तेजी से लागू किए गए तथा कमाल के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण उन्हें कानूनी रूप मिला, परंतु जनता में आंतरिक क्षोभ सदा वर्तमान था। आर्थिक क्षेत्र में कृषि अवहेलना का पात्र रहा, अतः उसमें मौलिक सुधार नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार तथा अन्य दोष उपस्थित थे और निर्वाचन प्रथा निष्पक्ष नहीं थी। एक दलीय सरकार के कारण वास्तविक गणतंत्र का विकास नहीं हो सका। धार्मिक क्षेत्र में मौलिक सुधार के लिए टर्की तैयार नहीं था, फलतः इस कारण भी असंतोष बना रहा। इस तरह मुस्तफा कमाल के अधिकांश सुधार लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सके तथा उन्हें अपेक्षित वातावरण निर्मित करने में सफलता प्राप्त नहीं की। आइए अब देखते हैं मुस्तफा कमाल एवं तुर्क वैदेशिक नीति 1923 से 1938 के बीच। गणतंत्र के पूर्वी टर्की का वैदेशिक संबंध। गणतंत्र के पूर्व टर्की का वैदेशिक संबंध। गणराज्य की स्थापना 29 अक्टूबर 1932 ईस्वी के पूर्व महान राष्ट्रीय सभा ने 23 अप्रैल 1920 ईस्वी को देश के शासन का दायित्व अपने कंधों पर लिया था। मुस्तफा कमाल इसके अध्यक्ष की हैसियत से इसका भी सर्वे सर्वा था। इसी समय टर्की के चारों ओर दुश्मन विराजमान थे तथा शेब्र की संधि ने टर्की की मृत्युशैया ही तैयार कर दी थी। इस समय टर्की पर वैदेशिक राज्य भूक्षित गिद्धों की तरह छाए थे। सिलीसिया में फ्रांस, तुर्क में ग्रीस, दक्षिण अनातोलिया में इटली, कुस्तुनतुनिया में ब्रिटिश फौज तथा आर्मेनिया में स्वतंत्र राज्य टर्की के अंग प्रत्यंग को दबेच रहे थे। ऐसी अवस्था में नवोदित सोवियत रूस टर्की का एकमात्र सहारा था तथा वह अस्त्र शस्त्र से टर्की के राष्ट्रीय सरकार की मदद कर रहा था। मुस्तफा कमाल ने एक एक कर इस सभी दुश्मनों से निपटने की योजना तैयार की। सर्वप्रथम उसने फ्रेंच फौज को सिलीसिया से अलेप्पो की ओर धकेल लिया। तथा फ्रांस ने 30 मई 1920 ईस्वी को एक संधि द्वारा युद्ध संबंध खत्म कर दिए। तत्पश्चात मुस्तफा कमाल ने अक्टूबर 1920 ईस्वी में आर्मोनिया पर धावा बोला तथा इसमें उसे सोवियत फौजों ने भी सहयोग दिया। इस आक्रमण से आर्मेनिया का अंत हो गया तथा 3 दिसंबर 1920 ईस्वी को रूस तथा टर्की के बीच अलेक्जेंड्रोपोल का समझौता हुआ, जिसके अनुसार टर्की को कार्स एवं अर्दहान के किले प्राप्त हुए। तत्पश्चात 13 मार्च 1921 ईस्वी को इटली के साथ ही टर्की की संधि हुई तथा कतिपय आर्थिक सुविधाओं के बदले में इटली ने अपनी फौजों को अनातोलिया से हटा लिया। इसी समय 16 मार्च 1921 ईस्वी को सोवियत रूस के साथ सहयोग एवं मित्रता की एक संधि हुई, जिसके अनुसार अलेक्जेंड्रोपोल की शर्तों की को अंतिम स्वीकृति दे दी गई। रूस को बाटम का क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा इस इलाके में दोनों के सरहद मिल गए। 20 अक्टूबर 1921 ईस्वी को फ्रांस के साथ हुई फ्रैंकलिन बुलों समझौता हुआ, जिसके अनुसार फ्रांस को कई आर्थिक अधिकार प्राप्त हुए तथा उसने अपनी फौजें तुर्क क्षेत्रों से बाहर निकाल ली। इन सबों से मुक्त हो मुस्तफा कमाल ने ग्रीक आक्रमणकारियों को सितंबर 1922 ईस्वी में तुर्क क्षेत्र से खदेड़ दिया तथा अपना रुख कुस्तुनतुनिया की ओर किया। ब्रिटिश सरकार ने अंत में 11 अक्टूबर 1922 ईस्वी को मुदानिया की विराम संधि द्वारा एड्रियानोपल एवं पूर्वी थ्रास में तुर्क आधिपत्य मान लिया तथा शेष प्रश्नों के लिए लोजान सम्मेलन बुलाया। लोजान सम्मेलन के अंत में लोजान की संधि हुई तथा स्वतंत्र तुर्क राष्ट्र का आरंभ हुआ, परंतु इस संधि द्वारा जो व्यवस्था हुई उसके अनुसार मोसुल, अलेक्जेंड्राटा एवं खाड़ियों के प्रश्न पर टर्की का असंतोष बना रहा। वास्तव में टर्की में स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात राष्ट्रों तथा खासकर ब्रिटेन के प्रति काफी क्षोभ था और सोवियत रूस के प्रति प्रसन्नता तथा प्रेम भाव था, परंतु टर्की युद्ध से थक चुका था, अतः वह अपनी समस्याओं के सुलझाव युद्ध द्वारा नहीं करके शांतिमय तरीके से करना चाहता था। अतः गणराज्य की स्थापना के बाद टर्की ने शांतिपूर्ण वैदेशिक नीति अपनाई तथा इसमें उसे पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई। तुर्क गणराज्य एवं वैदेशिक नीति। तुर्क गणराज्य की वैदेशिक नीति वास्तव में महान राष्ट्रीय सभा की वैदेशिक नीति का ही विकास था। मुस्तफा कमाल की प्रधानता इस काल में सदा बनी रही तथा उसने ही वैदेशिक नीति का रूप निर्धारण किया। गणराज्य की स्थापना के साथ ही उसने टर्की को एक शांतिप्रिय देश घोषित किया एवं गृह और वैदेशिक शांति की नीति अपनाई। नवीन टर्की काफी छोटा था तथा इसकी आबादी 1.5 करोड़ लगभग थी। उसे इराक एवं सीरिया से अपनी सरहद निश्चित करनी थी तथा खाड़ियों पर तुर्क आधिपत्य स्थापित करना था। इस दिशा में सोवियत रूस उसका अकेला हिमायती था। उसने लोजान के सम्मेलन में भी तुर्क मांगों का समर्थन किया। इस सम्मेलन ने मोसुल का प्रदेश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इराक को सौंप दिया था, जो टर्की को पसंद नहीं था। अतः ब्रिटेन इस प्रश्न को 1924 ईस्वी में राष्ट्रसंघ में ले गया। राष्ट्रसंघ ने एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसने 16 दिसंबर 1925 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट में मोसुल इराक को सौंप दिया। इससे टर्की को घोर निराशा हुई तथा उसने 17 दिसंबर 1925 ईस्वी को सोवियत रूस के साथ एक 10 वर्षीय मित्रता एवं सहयोग का समझौता किया, परंतु शांतिपूर्ण बातचीत जारी रही। 5 जून 1926 ईस्वी को तुर्क ब्रिटिश समझौता हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने टर्की को मोसुल के तेल का 10% देना तय किया। इसके पश्चात दोनों देशों के संबंध सुधरने लगे। मुस्तफा कमाल ने शांति स्थापना के हेतु दूसरा कदम 30 अक्टूबर 1930 ईस्वी को तुर्क ग्रीक संधि द्वारा उठाया। इसके अनुसार दोनों देशों ने विस्थापितों की संपत्ति एवं भूमध्य सागर में स्थिति के संबंध में समझौता कर लिया। इससे स्वतंत्रता संग्राम द्वारा उत्पन्न कटुता में पर्याप्त कमी आई। टर्की की इस शांतिपूर्ण नीति की पराकाष्ठा स्वरूप 18 जुलाई 1932 ईस्वी को टर्की को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हुई तथा वह विश्व सभा में अन्य देशों की पंक्ति में आ गया। यूरोप में फासिस्टों का उदय एवं टर्की की वैदेशिक नीति। यूरोप में तानाशाहों के उदय ने टर्की की वैदेशिक नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। इटली में मुसोलिनी की आक्रमणात्मक नीति के कारण टर्की को खतरा था। 1933 ईस्वी में जर्मनी के उदय से इस खतरे को और भी बढ़ा दिया। ऐसी अवस्था में टर्की ने बालकन देशों को आपसी संगठन पर जोर दिया तथा 9 फरवरी 1934 ईस्वी को बालकन मित्र संघ का एक सदस्य बन गया। इसमें यूगोस्लाविया, रोमानिया, ग्रीस एवं टर्की शामिल हुए एवं इन्होंने एक दूसरे की स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय एकता को बनाए रखने का वचन दिया और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए परामर्शदात्री संस्था का भी सृजन किया। 1935 ईस्वी में जब इटली ने अबिलिनिया पर आक्रमण किया तो टर्की ने राष्ट्रसंघ का पक्ष लिया, परंतु जर्मन पुनः शस्त्रीकरण द्वारा उत्पन्न खतरे ने टर्की को ब्रिटेन एवं फ्रांस के पक्ष में ला दिया। अतः अब इस देशों से संबंधित विवादों को सुलझाना आसान हो गया। सर्वप्रथम खाड़ियों के प्रश्न पर एक समझौता हुआ। 20 जुलाई 1936 ईस्वी को मॉन्ट्रो संधि द्वारा लोजान की शर्तों में संशोधन लाए गए तथा इस क्षेत्र में टर्की को पुनः सैन्यकरण का अधिकार दे दिया गया। शांतिकाल में सभी देशों के व्यापारिक पोत एवं काला सागर के तटवर्ती क्षेत्रों को सीमित संख्या में युद्ध पोतों को खाड़ियों से गुजरने की छूट दे दी गई। युद्धकाल में तटस्थ टर्की को अपने अपने विरोधियों के आवागमन पर पूर्ण रोक लगाने का अधिकार मिला। युद्ध में तटस्थ टर्की सिर्फ संधि द्वारा ही अपना अथवा पोत पर भी तटस्थता भंग करने पर रोक लगाने का टर्की को अधिकार प्राप्त हुआ। इस तरह टर्की ने अपना खोया हुआ अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही अलेक्जेंड्रेटा की प्रश्न पर भी फ्रांस के साथ टर्की ने इसी काल में वार्तालाप आरंभ किया। सितंबर 1936 ईस्वी में फ्रेंच सीरिया संधि द्वारा फ्रांस ने अलेक्जेंड्रेटा सीरिया के हाथ से में सौंपने का निश्चय किया। टर्की ने यह मामला राष्ट्रसंघ के सम्मुख पेश किया तथा मई 1937 ईस्वी में राष्ट्रसंघ ने इसे इस क्षेत्र के स्वराज्य, निःसैनीकरण एवं तुर्क जाति के विशेषाधिकारों की मान्यता संबंधी विधान निश्चित किया, परंतु इससे वहां की तुर्क जाति में भयानक असंतोष का उदय हुआ तथा अशांति का वातावरण स्थापित हो गया। अंत में 3 जुलाई 1938 ईस्वी में फ्रेंच तुर्की समझौता द्वारा आम निर्वाचन करना तय हुआ तथा एक संयुक्त फ्रेंच तुर्की शासन की व्यवस्था की गई। सितंबर 1938 ईस्वी के निर्वाचन में तुर्कों को बहुमत प्राप्त हुआ और उन्हें प्रदेश में गणतंत्र स्थापित करना निश्चय किया। 2 सितंबर 1938 ईस्वी को अलेक्जेंड्रेटा हेटी गणराज्य के नाम से नवीन राज्य बना, जिसमें टर्की का आधिपत्य कायम हो गया। अगले साल वह टर्की में मिला लिया गया। इस प्रकार शांतिपूर्ण नीति द्वारा मुस्तफा कमाल अपने सभी वैदेशिक प्रश्नों का समाधान करने में सफल रहा। उसने अपने एशियाई पड़ोसियों से भी मित्रता की तथा इसके लिए प्रयास भी किया। 8 जुलाई 1937 ईस्वी को टर्की, इराक एवं अफगानिस्तान के बीच सादाबाद की संधि हुई, जिसके अनुसार इन्होंने अपनी सरहदों को अक्षुण्ण बनाए रखने का फैसला किया एवं सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाने में आपसी वार्तालाप पर जोर दिया। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पहले टर्की ने अपने सभी महत्वपूर्ण वैदेशिक समस्याओं पर समझौता कर लिया था। अपने यूरोपीय पड़ोसियों के साथ बालकन संधि एवं एशियाई पड़ोसियों के साथ सादावाद की संधि द्वारा यह निश्चित हो चुका था। पाश्चात्य देशों से उसने मित्रता एवं सद्भावना कायम कर ली थी तथा सोवियत रूस के साथ सन 1935 ईस्वी में 1925 ईस्वी की संधि के अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इस तरह मुस्तफा कमाल ने देश को आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से संगठित एवं मर्यादित कर दिया। 10 नवंबर 1938 ईस्वी में उसकी मौत हो गई तथा 11 नवंबर को उसका स्थान उसके प्रमुख सहयोगी इस्मत इनोनू ने ले ली। इस तरह एक गौरवशाली एवं सफल जीवन की समाप्ति हुई। मुस्तफा कमाल का चरित्र तथा कार्यों का मूल्यांकन। मुस्तफा कमाल ने टर्की को नवजीवन प्रदान किया। सदियों से टर्की पूर्व का मरीज बना हुआ था। प्रथम महायुद्ध में उसके रोग का अंत उसकी मौत से होना निश्चित था, परंतु मुस्तफा कमाल ने अपने योग्य नेतृत्व के कारण उसके मृत्यु सैया से हटाकर एक स्वस्थ जीवन दिया। उसने टर्की पर से विपत्ति के मंडराते बादल हटा दिए तथा उसे एक नया संविधान, नई अर्थव्यवस्था, नया समाज एवं नई वैदेशिक नीति दी। वास्तव में युद्धोपरांत टर्की विशाल ऑटोमन साम्राज्य का खंडहर मात्र था। उस खंडहर को नूतन राष्ट्र को रूप देने का श्रेय मुस्तफा कमाल को ही था। वह एक योग्य सेनापति, सफल निर्माता एवं कुशल राजनीतिज्ञ सिद्ध हुआ। गणराज्य की स्थापना के पश्चात उसने शांतिपूर्ण नीति अपनाकर टर्की के सभी महत्वपूर्ण समस्याओं का निदान खोजा एवं सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्री भाव कायम करके इसे सुरक्षित कर दिया। अपनी मृत्यु के पूर्व उसने टर्की को सभ्यता के प्रशस्त मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर टर्की आबाद गति से प्रगति कर सकता था। इन सब सफलताओं के कारण उसे टर्की का पिता अथवा अतातुर्क की उपाधि मिली। यह सर्वथा उचित ही था। इस सब ज्वलंत सफलताओं के बावजूद मुस्तफा कमाल के कार्यों की आलोचना भी हुई है। उसके विरोधियों ने उसकी कृषि के प्रति उदासीनता तथा कृषि संबंधी समस्याओं के उदय के लिए उस पर दोषारोपण किया है। उसने निर्वाचन की निष्पक्षता एवं बहुदलीय जनतंत्र के विकास पर ध्यान न देकर जनतंत्र के उचित विकास का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिसका परिणाम तुर्क राजनीतिक जीवन पर अनिष्टकारी हुआ। वास्तव में उसने अपने व्यक्तिगत तानाशाही पर कभी आंच नहीं आने दी तथा अपने विरोधियों का कठोरता से दमन किया। धर्मानुचरों ने उसकी नास्तिकता एवं धर्म विरोधी आचरण की भर्त्सना की है। इसके अतिरिक्त उसके व्यक्तिगत जीवन की सर्वाधिक आलोचना हुई है। वह जुआ, शराब एवं सुंदरियों का अनन्य प्रेमी था, अतः उसने व्यक्तिगत आलोचना हुई है। वह जुआ, शराब एवं सुंदरियों का अनन्य प्रेमी था, अतः उसने व्यक्तिगत जीवन का कोई आदर्श पेश नहीं किया। इन सब त्रुटियों के बावजूद वह विश्व के महान व्यक्तियों की पंक्ति में आता है। वह एक ही साथ योग सैनिक सुधारक एवं राजनीतिज्ञ था, कोई आदर्श पेश नहीं किया। इन सब त्रुटियों के बावजूद वह विश्व के महान व्यक्तियों की पंक्ति में आता है। वह एक ही साथ योग्य सैनिक, सुधारक एवं राजनीतिज्ञ था। इतने गुणों का सम्मिश्रण एक साथ होना दुर्लभ है। उसने 20 वर्षों में ही विश्रृंखलित तुर्क जाति को एक नए प्रगतिशील राष्ट्र में परिणत करके एक चमत्कार कर दिया था तथा अतातुर्क की पदवी उसके कार्यों एवं सफलताओं की वास्तविक स्मृति है। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।